अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सैर पर आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को महसूस करेंगे। तो आइए चले पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर आइए चले अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में बुगुन समुदाय ने मंगलवार को अपने फार्म को स्वाय उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। फार्म को स्वाय एक कृषि आधारित और बुगुन समाज का मुख्य उत्सव है। यह उत्सव हर साल 10 सितंबर को आयोजित होता है। फार्म को शब्द में फार्म का अर्थ है पहाड़ और खो का अर्थ है नदी या पानी के किसी भी रूप को दर्शाता है। इस उत्सव का उद्देश्य बुगुन समुदाय में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। इस मौके पर लोग पहाड़ों और नदियों को अपने पारंपरिक नृत्यों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से सम्मानित की जाती है। फार्म खो स्वाय सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह भुगुन जनजाति की वन्य जीव संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जनजाति द्वारा सिंचुन भुगुन कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना ने एंडेंजर्ड भुगुन लियोचिस्ला पक्षी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संरक्षण प्रयास ने उन्हें 2018 में प्रतिष्ठित भारत जैव विविधता पुरस्कार प्राप्त करने में मदद की। फार्म खो स्वाय उत्सव बुगुन जनजाति की अपनी भूमि के प्रति गहरी जुड़ाव और उनके स्थायी सांस्कृतिक प्रथाओं की याद दिलाता है। यह उत्सव बुगुन जनजाति की समृद्ध परंपराएं, संरक्षण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में योगदान को दर्शाता है। नॉलेज डायरी के लिए मेरा केश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
इस सप्ताह पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन के बाद खिलाड़ी स्वदेश लौटे हैं। इस बार खेलों में भारतीय टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और देश को गौरवान्वित किया है। भारतीय दल में मणिपुर के खिलाड़ी एथलीट होकाटो हुटेजो सीमा ने पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में 14.65 मीटर के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। दीमापुर के 40 वर्षीय होकाटो पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट के लिए कांस्य पदक जीतने वाले नागालैंड के पहले पदक विजेता बन गए हैं। चीन में हुए एशियाई पैरालंपिक खेलों में 13.94 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था और वर्तमान में वे दुनिया में 7वें स्थान पर हैं।
काटो होटोशी सेमा ने पहली बार राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया था और स्टैंडिंग शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। तब से उन्होंने पीछे मोड़कर नहीं देखा और 6 साल के छोटे से अंतर में उन्होंने 9 राष्ट्रीय पदक और 3 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते है। 9 असम रेजिमेंट के हलवादर होकाटो ने 2002 में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान पारोदी सुरंग में अपने पैर खो दिया था। होकाटो का जन्म 26 दिसंबर 1983 को हुआ था। जब वे सेना के असम रेजिमेंट में शामिल हुए तब उनकी उम्र 17 साल भी नहीं थी। नागालैंड में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले होकाटो एक किसान परिवार के 4 बच्चे में से दूसरे हैं। युवा होकाटो हमेशा के लिए सेना में शामिल होने के सपना देख रहे थे और जुलाई 2001 में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में अपनी इकाई में शामिल होने पर उन्होंने शारीरिक फिटनेस और मजबूत इरादे के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किए। लेकिन 14 अक्टूबर 2002 के एक काउंटर घुसपैठ ऑपरेशन के दौरान त्रासदी हुए और उनके सपने बिखर गए। वे बरौदी सुरंग विस्फोट में घायल हो गया और घुटने के नीचे अपने बायां पैर को खो दिया। विधान बना ये है कि ये उनके विशेष बालों के लिए प्रोबेशन पर जाने से सिर्फ 3 दिन पहले की बात है। इस घटने के बावजूद वे पैरा स्पोर्ट्स में अपने सच्चे संकल्प और मेहनत से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनके उपलब्धि के बाद नागालैंड सरकार ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के F57 शॉटपुट प्रथमिक कांस्य जीतने के लिए पैरालंपिक विजेता होकाटो होटो शेसेमा को 1,50,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये घोषणा मुख्यमंत्री निफ्यूरियो ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होकाटो नागालैंड के पहले ओलंपिक पदक विजेता है, इसलिए राज्य सरकार उन्होंने अर्जुन पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार से उनके नाम की सिफारिश करेगी। श्री रियो ने कहा कि राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय के समक्ष उनकी प्रोन्नति के मान भी करेगा। नागालैंड से पूर्वोत्तर डायरी के लिए असोनिया।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे के साथ इस सप्ताह बुधवार को भारतीय पैरालंपिक दल के शेष सदस्यों के नई दिल्ली लौटने पर उन सबको सम्मानित किया। दोनों मंत्रियों ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में खिलाड़ियों की बेमिसाल उपलब्धियों पर उनको हार्दिक बधाई दी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी उपलब्धियों से पूरे देश ने गर्व और प्रसन्नता महसूस की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की पूरी तरह से सहायता करना जारी रखेगी और ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि वे अपनी उच्चतम क्षमता तक प्रदर्शन करें। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के पैरालंपिक खेलों के लिए दृढ़ निश्चय की भावना और पक्के इरादे के साथ तैयारी करने के लिए भी प्रेरित किया। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए गई भारतीय टीम से मुलाकात की और उनके अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा,
सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं, वो देश की ताकत बनता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्व के हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHHDC ने अभी हाल ही में जर्मनी से प्रत्यक्ष रूप से अपने एरी रेशम के लिए प्रतिष्ठित ओकोटेक्स प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल इस क्षेत्र की पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देती है, बल्कि एरी सिल्क को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सतत कपड़े के रूप में भी स्थापित करती है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट सुनते हैं।
एरी सिल्क दुनिया भर में प्रसिद्ध एकमात्र शाकाहारी रेशम है, जहां अन्य रेशम के लिया कोकून के अंदर कीट को मारा जाता है, वहीं इसके बदले यहां कीट को स्वाभाविक रूप से कोकून से बाहर निकलता है और इसे हमारे उपयोग के लिए पीछे छोड़ देता है। यह नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया एरी सिल्क को सबसे अलग बनाती है, जिससे ये कपड़ा उद्योग में करुणा और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि रोकोटेक्स प्रमाणन एक कठोर मानक है, जिसमें वस्त्रों पर हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी के लिए परीक्षण किया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में उनका उत्पादन किया जाता है, और ये एरी सिल्क के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह उपलब्धि असम में GI टैग के उत्पाद के रूप में रेशम की स्थिति को और मजबूत करती है, साथ ही इसकी प्रामाणिकता को और क्षेत्रीय महत्व को उजागर करती है। यह प्रमाणन एरी सिल्क को वैश्विक निर्यात बाजार में प्रवेश करने और इसकी पहुंच का विस्तार करने के साथ ही मजबूत तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए NAIHHDC की प्रतिबद्धता को भी ये रेखांकित करती है। एरी सिल्क के लिए ये मील का पत्थर है जो नए अवसरों को खोलता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अग्रणी पर्यावरण अनुकूल कपड़े के रूप में स्थापित करता है और वैश्विक कपड़ा उद्योग में योगदान करने में इसकी क्षमता का प्रदर्शन करता है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं कमल कुमार प्रजापति।
नागालैंड की बात करते हैं, जहां इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान एक पेड़ माँ के नाम के हिस्से के रूप में भाग लिया जा रहा है। आकाशवाणी कोहिमा के कर्मचारियों ने इस सप्ताह अपनी माँ के सम्मान में कार्यालय परिसर में पेड़ लगाने के कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य में आकाशवाणी कोहिमा के लिए अभियान का शुभारंभ करते हुए कोहिमा के क्लस्टर प्रमुख उप महानिदेशक इंजीनियरिंग के रिंगमा ने कार्यालय में एक पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। कार्यालय परिसर में पेड़ों और सजावटी पौधों के कुल 24 पौधे लगाए गए हैं। हमारी कोहिमा संवाददाता असनू ने हमें बताया कि आकाशवाणी कोहिमा ने दीमापुर हाई पावर ट्रांसमीटर जुबजा मोकोकचू और स्थानीय रेडियो स्टेशन मोन और त्वेनसांग फेक वोखा और जुन्ही बोटो में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में सभी कर्मचारियों के लिए वृक्षारोपण अभियान के लिए विशिष्ट दिन निर्धारित किए हैं। नागालैंड सरकार ने एक बड़े फैसले में चुमुकेदीमा न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट ILP के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में इस सप्ताह बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI के सहयोग से पूर्वोत्तर परिषद NEC ने हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए नए और संसाधित दोनों रूपों में बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट नाम की एक डिजिटल पहल शुरू की है। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध इस पहल को शिलंग में संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया। NERACE डिजिटल प्लेटफॉर्म NEC द्वारा वित्त पोषित है और इसे NEDFI द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। और जानकारी लेते हैं पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से।
इस पोर्टल या ऐप के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन यानी FPO या किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमी बिचौलियों की भूमिका को कम करते हुए संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद सीधे दिखा सकते हैं और भरोसेमंद तथा दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। इन खरीदारों में निर्यातक, एग्रीगेटर्स, संगठित क्षेत्र के खरीदार, थोक और खुदरा खरीदारों एवं व्यक्तिगत उपभोक्ता शामिल हैं। प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला सेवा प्रदाताओं जैसे ट्रांसपोर्टर्स, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन सेवाएं भी शामिल हैं। पोर्टल एक हेल्पलाइन नंबर द्वारा समर्थित है जो खरीदारों, विक्रेताओं और अंग्रेजी, हिंदी एवं असमिया, बंगाली, नेपाली, मणिपुरी, खासी और मिजो जैसे प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा प्रदाताओं को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त खरीदारों और विक्रेताओं के लिए क्षेत्र स्तरीय मानव शक्ति के माध्यम से ऑन ग्राउंड सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस पहल में उत्पादकों की क्षमता सृजन के लिए राज्यवार और क्लस्टर आधारित किसान ऑनबोर्डिंग शिविरों के प्रावधान शामिल हैं, जिससे वे वैश्विक बागवानी तक पहुंचने के लिए प्रभावी ढंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें। इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा मसाला बोर्ड, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी और लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ के साथ साथ राज्य सरकार के विभागों के बीच सहयोग का भी प्रावधान है। इसमें प्रमुख रूप से उच्च मांग वाली विदेशी और प्रीमियम कृषि बागवानी फसलों को बढ़ावा देकर उत्तर पूर्वी भारत की अनूठी कृषि क्षमता का लाभ उठाना शामिल है। साथ ही उत्पादकों को खरीदारों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाना, उनके उत्पादों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उत्पादकों और खरीदारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की अग्रिम बुकिंग करना तथा सेवा प्रदाताओं को प्लेटफॉर्म पर लाकर और उनकी सेवाओं को सुविधाजनक बनाकर लॉजिस्टिक की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना। इसके साथ ही इसमें उत्तर पूर्वी भारत के उत्पादों के लिए वन स्टॉप शॉप प्रदान करना और विभिन्न मिशनों और परियोजनाओं के तहत पादित किए गए हैं। उत्तर पूर्व में कृषि बागवानी क्षेत्र की क्षमता और संभावनाओं पर प्रयोग सिद्ध साक्ष्य प्रदान करना, सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अधिक डेटा संचालित पहल करने में सक्षम बनाना है, विशेष रूप से कृषि अवसंरचना के विकास में। लोकसभा में ये जानकारी बीते सत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए मैं कमल कुमार प्रजापति।
पर्यावरण के प्रति समर्पण का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए 50 वर्षीय बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर जयंत महाजन भारत की सीमाओं पर साइकिल चलाकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं।
So far, he had covered 10,500 kilometers journey. Continuing his journey from Wokhat on September 11, Mahajan is paddling towards Arunachal Pradesh via Jorhat, crossing the Brahmaputra. He will reach Arunachal Pradesh in the next 3 to 4 days.
10 सितंबर को श्री महाजन 20,000 किलोमीटर की यात्रा के हिस्से के रूप में वोखा पहुंचे। ये यात्रा उन्होंने 23 जनवरी को नादाबेट कच्छ गुजरात से शुरू की थी। पर्यावरण के प्रति जुनून से प्रेरित होकर श्री महाजन ने नागालैंड पहुंचने से पहले मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम को कवर किया और फिर महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राज्यों और उत्तर पूर्व से साइकिल चलाकर यात्रा की।
Hi, I'm Jain, a business management professor, currently a cyclist, cycling for 20,000 kilometers along borders of India with the message, change before climate change.
अब तक उन्होंने 10,500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और 9,500 किलोमीटर और तय करना बाकी है। वोखा से अपनी यात्रा जारी रखते हुए श्री महाजन ब्रह्मपुत्र को पार करते हुए जोरहाट के रास्ते अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं।
We as human beings have to start adopting sustainable lifestyle and stay in tune with nature so that the climate doesn't change for worst. So we have to be the change.
इसके बाद वे बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि 25 जनवरी 2025 तक वे अपनी यात्रा उसी स्थान पर पहुंचकर पूरी कर लेंगे जहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, यानी नादाबेट कच्छ गुजरात पहुंच जाएंगे। उनका मिशन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों और समुदायों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रभावित करना है।
I meet a lot of experts, activists and all the people who work on the ground and learn from them and also connect with different student bodies, communities, government departments and try and spread this message of change before climate change. It's a physically enduring journey full of challenges. However, I've been very happy with the response and support which I've been getting from everyone whom I have been meeting throughout my journey.
ये यात्रा उनका अकेले का तथा अपनी ओर से ही पहल किया गया प्रयास है जिसमें श्री महाजन को रास्ते में शारीरिक सहन शक्ति की अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
Mahajan's mission is to influence individuals and communities to act now in the fight against climate change. The journey is a solo self-initiated effort with Mahajan facing physical endurance challenges along the way. With Johanna Murray, this is Asonyo from Akashvani News, Kohima.
Oh.
और इसी संबंध में हमारे इम्फाल संवाददाता जे जे थोकचुम ने ये रिपोर्ट भेजी है।
जयन महाजन महाराष्ट्र के पुणे से साइकिल चालक है। वहाँ एक पर्यावरणविद भी है जो ग्रह बचाओ और जलवायु कार्रवाई के लिए साइकिल अभियान चला रहे हैं और वहाँ बुधवार को इम्फाल पहुँचे। उन्होंने लोगों से जुड़ने और हमारे वनों, भूमि, वायु और जल निकायों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2023 से गुजरात के कच्छ के नादाबेट से साइकिल अभियान शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। अब तक उन्होंने गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और अब मणिपुर को कवर किया है। आकाशवाणी समाचार पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए पर्यावरणविद जैन ने कहा कि उनका मिशन जलवायु परिवर्तन पर संदेश फैलाना, जलवायु कार्रवाई और सांस्कृतिक संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना है। उनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा,
From here, I intend to move towards Nagaland, Arunachal, and then exit from northeast into Bihar, and then further move to North India. I conclude my journey in Kutch, Gujarat.
पर्यावरणविद जयन महाजन 9 महीने तक अपना अभियान जारी रखेंगे। वहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का भी दौरा करेंगे। श्री जयंत क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्वोत्तर दायरी के लिए इम्फाल से जे जे थोकचुम।
और अब बात त्रिपुरा की।
त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला के पास नरसिंहगढ़ में पीएम श्री नवग्राम स्कूल ने प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने का एक अनूठा तरीका सफल तरीके से लागू करके दिखाया है। नवग्राम स्कूल ने राज्य के कई अन्य स्कूलों के लिए एक मिसाल भी रखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT की भूमिका पर बल देती है। इस नीति में शिक्षा प्रणाली में ICT को एकीकृत करने के लिए कई पहल शामिल की गई है। शिक्षा में ICT का मूल विचार है डिजिटल बुनियादी ढांचे को आकार देना और उसका उपयोग करना। इसे देखते हुए पीएम श्री नवग्राम स्कूल के अंग्रेजी के एक शिक्षक निलोय सरकार ने छात्रों को विषय को आसानी से समझने के लिए पढ़ाने और उनके लिए तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कक्षा 12 के छात्रों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किए, जिससे डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक नई शुरुआत हुई। आखिरकार वर्ष 2021 में राज्य शिक्षा विभाग ने सुनिश्चित किया कि इस विशेष स्कूल में स्मार्ट कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर समारोह के दौरान त्रिपुरा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का प्रतिष्ठित खिताब इस स्कूल को दिया और पुरस्कार जीतने वाले पीएम श्री नवग्राम स्कूल ने बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी प्रगति की है। शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी की एकीकृत करने वाले इस स्कूल ने ऑडियो विजुअल और एनिमेशन आधारित शिक्षण विधियों का लाभ उठाते हुए 473 स्मार्ट कक्षाएं संचालित की है। इस दृष्टिकोण ने हमें बताया गया कि इस प्रयोग ने छात्रों के बीच बहुत अधिक ध्यान और समझ भी आकर्षित की है। यह संस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख परियोजनाओं जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट व्यू बोर्ड, प्रज्ञान टैबलेट PC और ICT और ATL टिंकरिंग लैब के विकास के माध्यम से स्मार्ट कक्षाएं लागू करने में अग्रणी रहा है। सीखने को और विषय की समझ बढ़ाने के लिए कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रजिस्टर में सावधानी पूर्वक दर्ज किया जाता है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार अगरतला से पूर्वोत्तर डायरी के लिए।
पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों में प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं और भूगोल है। इन राज्यों में कुछ रोचक तत्व इस तरह से हैं, जैसे अपने चाय उद्योग के लिए असम को जाना जाता है, जो दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का घर भी असम है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल है और एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यह कई तरह की जातीय समूह और भाषाएं हैं। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा यहां देखा जा सकता है, जिसमें तवांग मठ भी शामिल है, जो देश के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। उधर नागालैंड अपनी जीवंत जनजातियों, संस्कृतियों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हर दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव का यहाँ आयोजन होता है, जिसमें नागा जनजातियों के पारंपरिक संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। उधर मणिपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत का गहना कहा जा सकता है। ये अपने शास्त्रीय नृत्य रूप मणिपुरी और इम्फाल में प्रसिद्ध इमा की थेल यानी माँ का बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जो एशिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। मिजोरम की बात करें तो ये राज्य अपनी हरी भरी पहाड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही जीवंत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है, जिसे चेराव कहा जाता है। ये एक लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रदर्शन है और ये राज्य अपनी उच्च साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो राज्य का समृद्ध इतिहास है और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का ये राज्य दावा करता है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों और भाषाओं की विविधता है, लेकिन एकता भी है। मेघालय की बात करें तो मेघालय, जिसे मेघों का आलय यानी बादलों का निवास कहा जाता है, दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। प्रसिद्ध मानसून, समृद्ध पारंपरिक त्योहार और ऊंचे नीचे भूभाग, कहीं तराई कहीं पहाड़, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए ये राज्य प्रसिद्ध है। सिक्किम की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधताएं हैं। कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई हिस्सों से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो चलने से पहले आइए सुंदर गीत सुनते हुए प्रकृति की अद्भुत छटा को संगीत और शब्दों के माध्यम से महसूस करते हैं।
गुलशन यहाँ पागल भरी सांपा गुरास सुना खरी
तो अब आपसे अनुमति लेनी होगी। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात के लिए उपस्थित होंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com। आपके सुझावों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी है, नोट कीजिए 9289094044 9289094044।
सरगा सरी सुंदर देश को
हम तो प्यारो प्यारो जन्मभूमि।
उसके साथ ही अब अनुमति दीजिए आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।